हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। यह एक अवसर है जब हम लोग भगवान पर अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं सुन करके। और आज तो अंतिम दिन है और कुछ ही घंटों में यह दिन भी समाप्त हो जाएगा और फिर चाहते हुए भी स्मरण नहीं कर पाएंगे। स्मरण अब और करना पड़ेगा जबरदस्त, घर का, बच्चों का, ये काम वो काम है ना। ए पीछे क्या गुत्थी समझा रहे हैं, वहां पीछे क्या कर रहे हैं है? क्या कर रहे हैं? सारा काम छोड़ करके सुनो। तो फिर जब अवसर बीत जाता है तो चाहते हुए भी मनुष्य भगवान में मन को स्थिर नहीं कर सकता है। इच्छाएं होती है कि मन भगवान में लग जाए, हो जाए, लेकिन नहीं लग सकता। ये भगवान कृपा करके अवसर देते हैं भगवान के गुणों के श्रवण का। गुण का अर्थ है विशेषताएं, भगवान का धन, भगवान का रूप, भगवान का यश, उनकी कृपा, भक्त वात्सल्य, ये सब भगवान के अनंत गुण हैं। इनको सुनने का जब अवसर आता है तो अपने आप भगवान में मन आविष्ट हो जाता है। परंतु श्रवण की अवधि बहुत अल्प है। ऐसा नहीं कि 7 दिन हम लोग सुनते ही रहे, 7 दिन के अंदर भी सोते ही रहे, जितना सुनने का टाइम था उससे ज्यादा श्रवण का टाइम, सोने का टाइम था, सब मिलाकर कहे से कीर्तन और श्रवण और जप यदि जोड़ा जाए तब शयन समय कम हो जाएगा इसके पीछे। लेकिन केवल श्रवण का समय तो कुछ भी नहीं था। कठिनाई से 4 घंटा सुन पाते थे जब खूब होता सकता हो, लेकिन शयन तो 4 घंटा से जब होता था तब तो ज्यादा ही होता था। ये बीत जाएगा, इसीलिए बारंबार इसका स्मरण किया जाता है। जैसे कुछ लोग कहीं पर खाने जाते हैं तो खूब अच्छा स्वादिष्ट पदार्थ मिलता है तो खाने के बाद भी आकर के खूब कथन करते हैं। संसारिक लोग सब आपस में बातें करते, ऐसा था, ये चटनी ऐसी थी, तो ये था, ऐसा वो था, ऐसा ऐसा, बड़ा मजा आया, इसको अनुमोदन कर तो भगवान के गुणों का स्मरण फिर से किया जाए तो मैं भी एक अनुमोदन ही कर रहा हूं। रामायण जी ने कहा कि जो कथाएं हो गई हैं उसी में से कुछ सुनाई, जिससे कि लास्ट कथा बाकी रहे वो दूसरे स्थिति में कहेंगे। बहुत बहुत बातें विचारनीय हैं, कथा के समय चाहते हुए भी बहुत व्याख्या नहीं हो पाती है, कुछ बातें स्पष्ट रह जाती हैं, किसी किसी बात की व्याख्या ठीक से हो पाती है, नहीं तो ज्यादा बातें तो उस समय कथा की औपचारिकता होती है, भाई समय पूरा हो जाएगा, 7 दिन है तो इतना श्लोक पूरा कर लेना चाहिए, यहां स्टॉप करना चाहिए, यहां ये करना चाहिए। अतः इसी कथा को फिर से 7 दिन कहा जा सकता है, चाहे 7 वर्ष भी कहा जा सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैसे महामंत्र कई साल हो गया जपते जपते, पुराना थोड़े हो रहा है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये नित्य नवायमान होता है, नित्य नवीन। अब जैसे इस श्लोक में आया है कि दुदृक्षव जस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधव। सुसाधव शब्द से हम भक्तों को प्रेरणा लेनी चाहिए, सुसाधु सुंदर सुष्ठु साधना रत व्यक्ति। जो व्यक्ति खुद साधना में लगा हुआ है उसको सुसाधु कहते हैं, सुंदर साधु।
और ऐसे साधु भर है साधना कर रहा है, ठीक है, वो भी साधु का भी अर्थ है साधना में लगा हुआ है, रत्न सोलह माला जॉब कर लेता है, मंगलारती में उठ जाता है, भागवत सुनता है और सब व्रत करता है, भागवत पढ़ता है, सब साधनाएं हुई। इसको जो साध है, जो कर है, वो है साधु, और इन्हीं साधनाओं को खूब मन लगा करके आनंद से निष्ठा के साथ करे तो उसको कहते हैं सुसाध, सुसाध सुंदर साध। तो अपनी साधुता का स्टैंडर्ड, अपनी साधना का स्टैंडर्ड सामान्य से ऊंचा उठाना चाहिए। तो आप जप करेंगे तो जप के बीच में बिल्कुल बात नहीं करें किसी से, अगर ऐसा कोई करे तो वो सुसाधु। माला पूरी होने पर भी बात नहीं करें। तो हम लोग जो जप करते हैं हरे कृष्ण कर रहे हैं और बीच में फिर दो चार बातें करते हैं, तो उससे बहुत नाम का अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है। भगवान नाम से बढ़ करके हमने उस बात के महत्व को समझा है ना। इस तरह से मान लीजिए कोई खीर पका रहा है और बीच में लेकर के बालू डाल दे उसमें, उस तरह से ये बात, कहां भगवान का नाम अमृत पी रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तब तक फिर कचरा बछड़ा संसार का इधर उधर करने लगता। तो भगवान नाम का एक बहुत बड़ा तिरस्कार। वैसे जैसे मान लीजिए किसी बहुत बड़े अतिथि को, उत्श्रेष्ठ आगंतुक को आप भोजन के लिए बैठाए हैं, परोस भी रहे हैं, और परोसते परोसते तो तब कहते हैं कि गांव से बाहर कुत्ता है, जरा उसको परोस आऊं तो इसके बाद आपको बाकी दूंगी। तब तो व्यक्ति आसन से उठकर भाग जाएगा कि ये तो हमारा बहुत बड़ा तिरस्कार हो रहा है ना। और वो अगर ये कहे, ये मन में ठीक है इनको परोस लेंगे, इसके बाद तब कुत्ता को परसेंगे, लेकिन ना एक बार इसको देकर के इस वक्त गांव से बाहर जा रहा है, कुत्ता को देकर आ रहा है, फिर परोस रहा है। भगवत नाम तो हैरान हो जाता होगा ये देख करके, क्या हमारा जप कर रहा है, अभी हरे कृष्ण कर रहा है, तब तक अभी माला भी पूरी नहीं हुई, तब तक दूसरी बात। इस दशा में हम लोग सुसाधु नहीं हो पाएंगे, सुंदर साधना परायण होना चाहिए इसके लिए। जप कर रहे हैं तो जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, यह नहीं कि सारा काम ये कहीं साथ। भागवत पढ़ते समय भी बातचीत, जप करते समय भी बातचीत, खाते समय भी बातचीत, कोई भी काम करते समय जैसे लगता है कि वार्ता ही साधन राज है, वार्ता आ ही जाए कुछ भी करें। इसी से शास्त्र कहता है गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरिम। महाराज इंद्रदुम्न ने मौन व्रत धारण करके भगवान की आराधना कर रहे थे और इस स्तोत्र का जप कर रहे थे। इसका अर्थ है कि यह स्तोत्र जपते समय वे और कोई बात नहीं बोलते थे, और वास्तव में वे सुसाधु थे। अगस्त जी जैसे ऋषि आए लेकिन छोड़े नहीं, आओ चाहे जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसी साधना से तो अगस्त जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक अवसर दिया इनको शीघ्र ही वैकुंठ जाने का। ऐसा सुसाधु होना चाहिए। और वास्तव में यह बात बिल्कुल तथ्य है कि मान लीजिए किसी का मन इतना भगवान में लगा हुआ कि कोई आवे जाए न उठे तो ठीक है, वो अच्छा, वास्तव में नाम जप के कारण नहीं उठ रहा है, मुझे क्या अभी मैं उठूंगा तो हमारा टाइम पूरा होते खंडित हो जाएगा, साधना खंडित हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो सुसाधव एकादशी व्रत करेगा साधु, तो कर रहा है तो कर रहा है निष्ठा के साथ। सब एकादशी करने के विषय में तो सुसाधु वो है जो निर्जला रहा है, सुंदर साधना। एकादशी एक व्रत है, प्लेटफार्म है, साधना दूसरी चीज है, लेकिन जैसे दूध रखने के लिए बर्तन चाहिए वैसे ही भजन करने के लिए कुछ व्रत जरूरी। तो निर्जला रहा, निर्जला नहीं रहा तो एक बार फल खा लिया बस, भजन कर सुसाधु। और साधु कहा जा सकता है भाई एकादशी को भी दो चार बार खाता रहता है साधु। साधु तो नहीं कहेंगे, साधु शब्द भी अपने आप साधना को इकट्ठा किए हुए बांधे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहली योग्यता तो चाहिए दीक्षा, उसके बाद मुनि होना पड़ेगा और होना पड़ेगा, सुसाधु होना पड़ेगा, तब हम अलोक व्रत कर पाएंगे, भागवत धर्म का आचरण करेंगे, और भागवत धर्म का आचरण करके तब हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। श्लोक से सिद्ध हुआ, क्योंकि इस प्रसंग को सुनने वाले प्रत्येक भक्त के मन में यह अभिलाषा उदित हो सकती है, क्या मैं भी श्री गजेंद्र की तरह भगवान को देख पाऊंगा, उनकी कृपा का पात्र बन पाऊंगा। बन सकते, स्वयं गजेंद्र जी कह रहे हैं, विदीक्ष हो जस्य पदम से मंगलम विमुक्त संगा मुनया सुशान। प्रश्न होता है कि ये कथा सुनकर हम क्या करें। भगवान के उद्गार से सिद्ध हुआ कि हम ये स्तोत्र पढ़ा करें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करते हैं उनको मैं विमल मति देता हूं मरते समय भी। जबकि मरते समय विमल या समल मति क्या मति रहती ही नहीं, मति नहीं रह जाती है। कृष्ण पदी या पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशत मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कफबात पीत कंठावरोधन विधव स्मरणम कुतस। जब मरने का समय आता है तो सारी नाड़ियां कफ से भर जाती हैं, तक रक्त संचार बंद हो जाता है। पहले रक्त संचार बंद होता है, नाड़ियां जम जाती हैं, इनमें जो रक्त है उसमें बहुत ज्यादा चर्बी और कफ भर जाता है, तो संचार नहीं हो पाता है, तो शरीर में दर्द होने लगता है, रग-रग में दर्द होता है, और यहां तक कि अब सांस लेने में भी बाधा होने लगती है। कंठावरोधन विधव, कफ बात पीत के बिगड़ जाने से कंठावरोध हो जाता है, मनुष्य सांस नहीं ले सकता, सांस लेने में ही तो घरर घरर ध्वनि होने लगती है मरने से पहले। तो जब सांस लेना भी दुर्भर हो गया है और शरीर के कण कण में बहुत भारी दर्द हो रहा है, उस समय कोई क्या कृष्ण का स्मरण कर पाएगा। आज हम लोग बैठे हैं और कोई व्यक्ति आवे और गला दबा ले, गला दबा दे और दूसरा कहे हरे कृष्ण बोलो, क्या करेंगे। पहले तो एक अंदाज है, छोड़ रे मर गया, गला छोड़ो छोड़ो, सांस लेने दो तब तो हरे कृष्ण कहूंगा। सांस लेने दो, पहले सांस लेने दो, वो दशा हो जाती। लेकिन भगवान कहते हैं कि उस मरने की विषम दशा में भी मैं विमल बुद्धि दूंगा देता। भगवान अहम शब्द लगाकर बोल रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस स्तोत्र का, महामंत्र का और भी भगवान की जो स्तुतियां हैं इनका निरंतर जप करते रहना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य। ऐसा नहीं कि हम भी त्रिकुट पर्वत पर जाएंगे पानी पीने और ग्रह पकड़ेगा तब फिर पुकारना चालू करेंगे। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास बैठा था, हम लोग भी सत्संग कर रहे थे, वो साधु प्रभुपाद जी का शिष्य था। तो उसने कहा कि प्रभुपाद जी की पत्नी चाय पीती थी और श्रील प्रभुपाद इस बात से बड़ा दुखी थे। उन्होंने कहा कि चाय छोड़ दो, वो नहीं छोड़ती थी, यहां तक कि भागवत टाइप किया हुआ पन्ना रद्दी कागज के भाव में बेच करके चाय खरीदी थी। तो प्रभुपाद जी तो हैरान हो गए। तो प्रभुपाद जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि अब आज से तुम मेरे साथ रहोगी, नहीं तुम्हारे साथ मैं रहूंगा कि टी रहेगा, यू सिलेक्ट आइदर टी और मी, ऐसे उन्होंने कहा इंग्लिश में। अब टी को सिलेक्ट करो चाहे मी को करो, दोनों में कहीं रहेगा। तो बेचारी नहीं समझी, समझी कि मजाक कर रहे हैं। उसके बाद उसने चाय नहीं छोड़ा तो उसका मी छूट गया, मतलब प्रभुपाद जी छोड़ करके चले, चाय नहीं छूट, वो चाय पीती रह गई, प्रभुपाद जी उसको छोड़ करके चले। ये तो सार्वभौम जी कथा कहते हैं कि एक मियाँ जी थे, मौलवी जी थे, वो कहते थे कभी कहे कि और तो नहीं लेकिन हमने दो गुण बहुत भगवान ने दिया है, बहुत बड़ा गुण दिया है बहुत बड़ा गुण दिया है वो कि एक तो मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, भगवान ने हमको दिया है एक गुण है कि मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है और दूसरा वो याद नहीं तो ये स्मरण शक्ति क्या तेज है एक गुण यह है कि स्मरण शक्ति बहुत है, दूसरा यह है कि याद ही नहीं तो इसी तरह से मुझे कुछ स्मरण नहीं हो रहा है, मैं क्या पॉइंट चालू किया था सुसाधो शब्द चल रहा था ना है? आप लोग बताइए क्या? हाँ अब ध्यान में आ गया। तो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी इस तरह से घर छोड़ दिए, उनकी पत्नी चाय नहीं छोड़ी, तो उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति लगभग 55 वर्ष का बैठा हुआ, तो वो कहता है मेरी भी पत्नी जब ऐसे हमको बोलेगी, हमारी आज्ञा नहीं मानेगी, तो मैं भी घर छोड़ दूंगा। ये हमारे सामने की बात हो रही, तो बात ये हो रही थी घर छोड़ देना चाहिए, भजन करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वो कहता है जब मेरी पत्नी ऐसे बोलेगी मुझको तब मैं भजन करूंगा, घर छोड़ दूंगा। तो अमेरिका का वो भक्त था जो प्रभुपाद जी की बात कह रहा था, तो उसने कहा डंकी डंकी और गधा कहीं, अब तुम्हारी स्त्री वैसे बोलेगी तब तुम भजन करोगे, और नहीं बोलेगी तब ऐसे नहीं तुमको डांटेगी, तुम्हारी आज्ञा मानती ही रहेगी, तब तो भजन नहीं करोगे। तो बार बार कह रहे थे डंकी डंकी गधा 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 ऐसे ये भवानंद महाराज कह रहे थे प्रभुपाद जी के एक शिष्य। तो ये कोई सोचे कि हमारी भी टांग पकड़ी जाएगी तब मैं अब जॉब चालू करूंगा, कितने लोग सोचते होंगे कि जब तक काम लायक है तब तक घर का काम धंधा कर लें, जब देखेंगे गिरेंगे तो उसी समय कुछ राम राम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। कितने जीवों को ग्रह पकड़े होंगे लेकिन सबको बचाने के लिए भगवान नहीं आए, सब नहीं स्मरण कर पाए। अब जाकर देखिए कितने अस्पताल में गजराज गिरे हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं, टीवी देखते हैं बैठकर। मैं अमेरिका में गया था एक अस्पताल में देखने, और मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि अमेरिका के बूढ़े लोग क्या करते हैं। हमारे एक मित्र ले गए देखने के लिए, अस्पताल में नहीं वो ओल्ड हाउस होता है उसमें अपने अपने घर से लोग बूढ़ों को ले जाकर रख देते हैं और कुछ महीना देते रहते हैं वेतन उनका पालन करने के लिए, घर पर नहीं रखते। हमारे भारत के लोग तो बूढ़े व्यक्ति को भी घर पर रखते हैं, सेवा करते हैं, और बूढ़ा व्यक्ति बच्चों को देखता रहता है। लेकिन विदेश की ये हालत है जब वे बूढ़े हो जाते हैं माता पिता तो उनको डाल आते हैं ओल्ड हाउस में और पैसा देते हैं, भेंट भी नहीं करते हैं। तो फादर डे आता है साल में एक बार, पितृ दिवस कहेंगे उसको फादर डे, तो उसी दिन फोन कर लेते हैं कि जी रहा है कि मर गया है, बस इतनी ही पितृ भक्ति है वहां, और कुछ गिफ्ट भेज देते हैं जाकर के उस दिन। जब पिता जीवित है तो उसको कुछ दे देना चाहिए, तो वे डाल देते हैं उस दशा में। तो मैं गया था देखने के लिए उसमें कि क्या करते हैं, तो आपसे बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, मैं गिना तो 70% बूढ़े टीवी देख रहे थे, टेलीविजन पर बैठे थे, टेलीविजन में वही तान तरंग नाना प्रकार के, वो बूढ़े सब नई नई लड़कियों को देख रहे थे टेलीविजन, और बड़े एकाग्र चित से, और कई कई बूढ़े एक साथ बैठे। मैंने कहा हे भगवान इनका मनुष्य जीवन कितना व्यर्थ जा रहा है, नाचते हुए गाते हुए यह एडवर्टाइज वह एडवर्टाइज यह वार्ता वह वार्ता सब देखते हैं। मैंने एक दूसरे से बात किया, मैं कहा कि आपको विश्वास है कि देह छोड़ने के बाद भी आप रहेंगे, तो एक व्यक्ति कहता है हाँ वो तो कब्र में रहेंगे ना। नहीं, मैं बताया कि देह छूटने के बाद आत्मा देह से भिन्न है वो चला जाएगा, तो कहते थे आत्मा, मैं कहा सोल, सोल और बॉडी में अंतर है ना, तो कहते नहीं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी, सोल एंड बॉडी आर द सेम, और वो कब्र में रहेगा, वैसे बोल रहे थे कब्र में रहेगा और एक दिन सब उठेंगे, इसीलिए कब्र को बहुत सजा करके रखते हैं, मार्बल का बनाते हैं और सब, वो सोचते हैं कि उसमें हम पड़े रहेंगे और भगवान कृपा करेंगे किसी दिन तो हम उसमें से उठेंगे, कयामत के दिन उठेंगे, और कब वो दिन आएगा उसके पहले सब हड्डी सब गल गई समाप्त, लेकिन वो ऐसे बोल रहा था हम तो कब्र में रहेंगे। अब वो समझ ही नहीं पाए कि देह में और आत्मा में अंतर, हमारे देश का तो एक बच्चा भी समझता है कि देह गया शमशान में और आत्मा गया स्वर्ग में चाहे कहीं भी गया, है ना, हम लोग समझ जाते हैं इस बात को, कोई भी बच्चा समझ जाएगा, लेकिन वे लोग नहीं समझ पाते। तो बताइए कोई व्यक्ति यह कहे कि हमारी स्त्री हमको डांटेगी तब राम राम करूंगा, या जब मैं अस्पताल में गिर जाऊंगा तो उसी समय कुछ भगवान का स्मरण कर लूंगा, ऐसे लोग सोचते हैं। और नया बच्चा नया लड़का जब भजन करता है तो कहते हैं ये तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी क्या कर रहे हैं, समय आने पर भगवान का भजन करना, ये भजन का समय नहीं। तो बच्चा यदि ये कहे कि तुम्हारा समय हो गया है ना, यदि उसका पुत्र सयाना या बच्चा होता है तुम्हारा समय हो गया ना, तुम करो तो कहो हमसे क्या होगा, हो ही नहीं सकता, तो बूढ़ा होने पर हो ही नहीं सकता, और बच्चा को तुम खुद ही मना कर रहे हो तुम मत करो, और जवान को फुर्सत ही नहीं, काम धंधा करेगा कि घर माला जपेगा तो कौन माला जपे। एक बार मैं ऐसे बात कर रहा था एक व्यक्ति से, कौन माला जपेगा, बच्चे को समय नहीं है, बूढ़ों को समय नहीं है, जवान को समय नहीं है, बूढ़ों को शक्ति नहीं है, बच्चों को बुद्धि नहीं है, और सयान को समय नहीं है, तो कौन जप करेगा। भक्त बगल में बैठा हुआ था, इस नगर के जितने गधा गाय बैल है सबको कंठी बांधा जाए और झोली दिया जाए वही जप करेंगे, क्योंकि आदमी तो करेंगे नहीं, आदमी को तो समय है ही नहीं। तो जब आदमी है आपको समय नहीं है, नहीं मन में आ रहा है, तो जिस दिन पशु बन जाएंगे